हेलो कायनातीस, हमारे सूरज से जो 10 गुना 20 गुना बड़े अगर मादे में जो सितारे होते हैं उनका इख्तिताम होता है इन न्यूट्रॉन स्टार्स में। ये बेसिकली ये मुर्दा सितारे हैं, ये कोर है जो सिर्फ न्यूट्रॉन्स का बना हुआ होता है। और ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं वो बहुत तेज़ी से स्पिन भी कर रहे होते हैं, चक्कर भी लगा रहे होते हैं, बल्कि जो कुछ बहुत सारे हैं इसमें वो 1 सेकेंड में 100 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं। इनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं पल्सार्स। अभी हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने इन पल्सार्स को इस्तेमाल किया है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। ये एक हैरत अंगेज कहानी है। ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। ग्रेविटी के सिलसिले में हम ज्यादा वाकिफ हैं न्यूटन की थ्योरी से, लेकिन 1915 में आइंस्टाइन की एक आई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने एक लिहाज से ग्रेविटी के सिलसिले में एक इनकलाब बर्पा किया साइंस में। अब मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दूं, एक आइंस्टाइन की उससे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जिसमें बहुत सारी चीजें जो रिलेटेड हैं वो रोशनी की रफ्तार के ताल्लुक में है। लेकिन जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो जो हमारी कायनात का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में बताती है और एक लिहाज से वो ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है। उसकी जो एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो ये कि हमारी कायनात जो है वो स्पेस और टाइम की बनी हुई है, यानी कि उसमें 3 डायमेंशंस जो हैं वो स्पेस की हैं, जिसको आप लेंथ ब्रेथ और हाइट या एक्स वाई जेड कह सकते हैं, और जो 4th डायमेंशन है वो टाइम की है और ये एक लिहाज से लिंक्ड है। अब इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी चीज जिसमें मादा हो, जिसमें मास हो, वो उस स्पेस टाइम को बेंड करती है। अगर आपका कम मास हो तो वो उसको कम बेंड करेगी, और अगर आपका ज्यादा मास हो तो वो उसको ज्यादा बेंड करेगी। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो अक्सर मिसाल लेते हैं कि वो ऐसी चीज है जैसे अगर आपकी कोई बेडशीट हो या चादर हो, आप उसके ऊपर अगर आप टेनिस बॉल रखें तो वो थोड़ा सा उसमें बेंड आएगा, और अगर आप उसमें बड़ी सारी बॉलिंग बॉल रखें तो उसका बेंड जो है वो ज्यादा आएगा। तो ये उसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप सोचें कि जमीन जो है उसमें काफी सारा मादा है, वो स्पेस टाइम को बेंड करती है, लेकिन जो सूरज है उसका क्योंकि मादा और ज्यादा है तो वो स्पेस टाइम को और ज्यादा वो बेंड करता है। तो एक लिहाज से ग्रेविटी के हिसाब से अगर आप सोचें तो जमीन जो है वो तो अपनी सीधी लाइन में जा रही है, लेकिन वो सूरज के मौत के कुएं की तरह जो उसका खड्डा है या जो उसके जो बेंडिंग है वो उसके अंदर है। तो जिस तरह मौत के कुएं में वो जो मोटरसाइकिल्स होती हैं वो जा तो सीधी रही होती हैं लेकिन वो उसके ऑर्बिट के अंदर एक लिहाज से होती हैं, इसी तरह से आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जमीन जो है वो ये जो सूरज की जो बेंडिंग है स्पेस टाइम वो उसके अंदर मौजूद है। अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जब कायनात में जब वो मूव करते हैं इस स्पेस टाइम में, तो वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी लूज करते हैं। अब उसी तरह की बात है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी थोड़ी सी एनर्जी लूज होती है, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ज्यादा, और वो जो एनर्जी लूज होती है वो ग्रेविटेशनल वेव्स के हिसाब से रिलीज होती है। अब 1970s में एक प्रोफेसर थे जोसेफ टेलर के नाम से, वो बल्कि यहां पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमर्स्ट है वो वहां पर थे, और उनका एक रिसर्च स्टूडेंट जो है रसल हल्स के नाम से, उन्होंने दरियाफ्त किए रेडियो टेलीस्कोप के जरिए 2 पल्सार्स। अब ये एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे थे। अब पल्सार्स जो हैं ये न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, ये जो बड़े सितारों का अख्ताम होता है, एक छोटे से डेंस कोर जो कराची या लाहौर जितना बड़ा वो बहुत ही डेंस होता है, वो न्यूट्रॉन्स का बना हुआ होता है, और ये बहुत तेजी से रोटेट कर रहा होता है, और जब वो रोटेट करता है उसमें इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स हैं कि वो पल्सेस देता है, और वो पल्सेस जो हैं वो अक्सर रेडियो वेव्स में एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। तो टेलर और हल्स ने 1974 में ये जो अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी जो पहले थी पोर्टो रिको में, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उन्होंने इसको दरियाफ्त किया दो पल्सार्स जो एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे थे। एक लिहाज से ये बड़ी अच्छी लेबोरेटरी थी इस किस्म की आइंस्टाइन की थ्योरी को टेस्ट करने के सिलसिले में, क्योंकि ये बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं मगर एक दूसरे के बहुत करीब और बहुत छोटे साइज के। उन्होंने ये देखा कि ये जो बाइनरी पल्सार्स हैं, यानी कि दो पल्सार्स, उनका ऑर्बिट थोड़ा सा डिके हो रहा है, मतलब ये कि उनका फासला एक दूसरे से थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है। अब न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक इनका ऑर्बिट जो है वो हमेशा स्टेबल रहना चाहिए था, लेकिन अगर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही है तो थोड़ी सी जो उनका ऑर्बिट का डिके है वो ग्रेविटेशनल वेव्स के तहत वो एनर्जी लीक हो रही है, और इसकी वजह से, इस दरियाफ्त की वजह से ये हल्स और टेलर को 1993 में नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने एक लिहाज से इनडायरेक्टली ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स वो डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं हुई थी, उन्होंने खाली ये देखा था कि ये पल्सार्स जो हैं बाइनरी वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, और ये असम्पशन ये थी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कि ये जो एनर्जी लूज हो रही है वो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। लेकिन फिर ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो शायद आपको याद हो 2015 में डायरेक्टली डिटेक्ट हुई थी, तकरीबन 100 साल के बाद आइंस्टाइन की थियोरी जो है जनरल रिलेटिविटी की, उसने प्रिडिक्ट किया था, और फिर 2015 में ये जो लाइगो और एक दो और डिटेक्टर थे, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, उसने पहली दफा ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की थी। अब इसमें जो है साउथ एशियन कनेक्शन भी है, क्योंकि आपको याद होगा कि नरगिस मावलवाला जो हैं, जो लाहौर में उनकी शुरू की पढ़ाई थी, वो उसमें काफी इन्वॉल्व थी, और ये जो लाइगो है उसका एक और साउथ एशियन कनेक्शन ये है कि अब इंडिया में भी अब एक लाइगो इंडिया बन रही है, जो मेरा ख्याल है इस डेकेड के आखिर तक वो ख़त्म हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी और फिर वो काम करना शुरू कर देगी। अब ये जो लाइगो ऑब्जर्वेटरी थी वो लेज़र के लिए, उसके जो एक लिहाज से आप कह सकते हैं उसका जो साइज है वो कुछ किलोमीटर, 4 किलोमीटर जितना है, और वो डिटेक्ट ये कर रही है कि अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव, और सोचें ग्रेविटेशनल वेव जो हैं वो स्पेस टाइम की छोटी सी वेरिएशंस हैं, कि अगर वो जमीन के पास से गुजरे तो ये जो लेजर्स हैं वो इस तरह से सेटअप हैं कि वो हल्की सी भी चेंज जो है वो उसको डिटेक्ट कर सकती हैं। वैसे मैं उसका चेंज का रिलेटिव साइज बता सकता हूं कि वो जो आपका प्रोटॉन है, तो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन है उसका भी 10,000 जो साइज है न्यूट्रॉन का, उतनी चेंज जो है वो लाइगो डिटेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, और जैसा कि आप सोच सकते हैं कि उसकी जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि और कोई और चीजें जो हैं वो कंटेमिनेट तो नहीं कर रही इस डिटेक्शन को, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इवेंचुअली 2015 में पहली दफा ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई, और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स थी जब उसकी डायरेक्शन देखी तो वो ब्लैक होल्स जो हैं, जो सूरज से कुछ गुना ज्यादा मादे में, उनके कोलिजन्स की वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई थी ये वो डिटेक्ट हुई। अब किस हिसाब से, अगर हम वापस से जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ जाएं, तो अगर आप सोच सकते हैं कि ब्लैक होल्स जो हैं वो काफी ज्यादा बेंड करते हैं स्पेस टाइम को, और जब बाइनरी ब्लैक होल्स होते हैं, यानी कि एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, तो उनके ऑर्बिट्स का आप सोच सकते हैं कि बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की वहां पर चेंजेस आ रही हैं स्पेस टाइम में, और जब वो मर्ज करते हैं तो बे इंतहा एनर्जी बड़े छोटे से अरसे में वो रिलीज करते हैं, और वो जो एनर्जी है वो रिलीज होती है ग्रेविटेशनल वेव्स में। तो जो पहली डिटेक्शन थी बाय द वे, वो ऐसे ब्लैक होल मर्जर की थी जो जमीन से तकरीबन 1 अरब 1 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर था, और वो हल्की सी उसकी जो ग्रेविटेशनल वेव है वो लाइगो ने डिटेक्ट की। अब 2015 से अब तक जो है तकरीबन 100 और इस किस्म की ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हो चुकी हैं, जो ब्लैक होल्स मर्जर्स या ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स की वजह से हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक लिहाज से एक नया तरीका है जो एस्ट्रोनॉमी की एक नई विंडो एक खुल गई, जिससे अब एस्ट्रोनॉमर स्टडी करते हैं कि अगर आपने ब्लैक होल मर्जर्स को स्टडी करना है तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं। अब एस्ट्रोनॉमर्स को पता है कि और किस्म की ग्रेविटेशनल वेव्स भी मौजूद होंगी, क्योंकि ये तो हम छोटे वाले ब्लैक होल्स के मर्जर्स की बात कर रहे हैं। तकरीबन हर गैलेक्सी के बीच में, हर कहकशां के बीच में सुपर मैसिव ब्लैक होल भी मौजूद है। जैसे हमारी जो अपनी मिल्की वे है, उसके बीच का जो ब्लैक होल है वो तकरीबन हमारे सूरज के मादे के मुताबिक 4 मिलियन गुना ज्यादा है। लेकिन ये तो छोटे साइज का है, जो और कहकशाएं हैं उसमें और भी बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स पाए जाते हैं, और कुछ तो 1 अरब या 1 बिलियन टाइम्स हमारे सूरज से ज्यादा मादा रखते हैं। और हमें यह भी पता है कि गैलेक्सीज जो हैं, कहकशाएं जो हैं, वो एक दूसरे से टकराती भी हैं। तो उनके बीच में टकराने के बाद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो हैं उनके भी पेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के बीच में भी पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो बाइनरी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं वो भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करेंगे जब वो ऑर्बिट कर रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्क होगी। एक्सपेक्टेड ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत लंबी। तो ये जो लाइगो डिटेक्टर था उसका जो साइज था वो तकरीबन 4 किलोमीटर जितना था, तो वो बाइनरी ब्लैक होल्स जो हैं वो उसको डिटेक्ट करने के लिए परफेक्ट था। लेकिन ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं उनकी वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव्स आती हैं उसका एक्सपेक्टेड है कि उनके जो साइज है उन वेव्स का वो लाइट ईयर्स में मेजर होगा, बल्कि 100 या 1000 लाइट ईयर्स जितना। तो अगर आपने उनको डिटेक्ट करना है तो आपको एक डिटेक्टर चाहिए जो 1000 लाइट ईयर्स जितना बड़ा हो। अब आप बिल्कुल सही कहेंगे कि इतनी बड़ी टेलीस्कोप, इतना बड़ा डिटेक्टर हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने इसी किस्म का डिटेक्टर बनाया, और ये एक फैसिनेटिंग, एक क्रिएटिव चीज है साइंस के सिलसिले में। ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं, जो जब रोटेट कर रहे होते हैं वो पल्सेस देते हैं, इसी किस्म के ये जो पल्सार्स हैं वो हमारी कहकशां में पाए जाते हैं मिल्की वे में। एक उनकी क्लास है जिसको कहते हैं मिलीसेकंड पल्सार्स। ये ऐसे पल्सार्स हैं, यानी कि स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, जो बे इंतहा तेजी से घूम रहे हैं, बल्कि जो मिलीसेकंड वाले हैं वो 1 सेकंड में वो 100 से भी ज्यादा दफा वो घूम जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनका जो साइज है वो कराची या लाहौर जितना, 10-15 किलोमीटर जितना उनका साइज होता है, बहुत डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो 1 सेकंड में 100 से भी ज्यादा चक्कर लगा, घूमने का चक्कर लगा लेते हैं। तो इनकी जो पल्सेस हैं वो इतनी रेगुलर हैं और इतनी प्रिसाइस है कि एक लिहाज से नेचुरल क्लॉक्स के हिसाब से, नेचुरल घड़ियों के हिसाब से ये बे इंतहा एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। बल्कि कुछ अरसे तक जो है जमीन के ऊपर भी जो साइंसदान हैं वो इन्हीं मिली सेकेंड पल्सार्स को इस्तेमाल करते थे वक्त के स्टैंडर्ड को बताने के लिए। तो ये जो मिली सेकेंड पल्सार्स हैं वो हमारी कहकशां में फैले हुए हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने पिछले 15 साल में, ठीक है, तो ये आप जरा सोचें, 15 साल तक वो कुछ दर्जन ये मिली सेकेंड पल्सार्स हैं वो उनको ऑब्जर्व करते रहे। किस तरह से? वो ये देख रहे थे कि किस तरह से उनकी पल्सेस हैं, यानी कि कुछ 100 टाइम्स 1 सेकेंड में, और उनकी रिलेशनशिप है दूसरे पल्सार से। तो ये एक पूरे नेटवर्क के जो पल्सार्स का है, एस्ट्रोनॉमर्स उसको देख रहे थे। इसको पल्सार टाइमिंग अरे कहते हैं। और ये जो पल्सार हैं वो कुछ हजार लाइट ईयर्स पे फैले हुए हैं। तो इस तरीके से एस्ट्रोनॉमर्स ने एक लिहाज से एक डिटेक्टर इस्तेमाल किया जो इन मिलीसेकंड पल्सार्स का बना हुआ है और जो हमारी कायनात में, हमारी अपनी कहकशां में फैला हुआ है। और इनकी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से एस्ट्रोनॉमर्स ने ये डिटेक्ट किया कि क्या उनकी जो पल्सिंग की टाइमिंग्स हैं, यानी कि वो जो पल्सेस आ रही हैं, क्या वो बदल रही हैं थोड़ी बहुत या नहीं। और ये काफी नहीं, बल्कि जिस तरह से वो बदल रही हैं, क्या वो ये बता रही हैं कि दरमियान में कोई ग्रेविटेशनल वेव गुजरी या नहीं गुजरी। आप एक लिहाज से इस तरह की सोच सकते हैं कि अगर आप समुंदर में हो या दरिया में हो या पॉन्ड पे हो, कहीं पर भी अगर कोई वेव वहां से गुजरती है तो तमाम चीजें जो हैं वो ऊपर और फिर नीचे होती हैं। तो अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव हमारी कहकशां में से गुजरी तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो मिलीसेकंड पल्सार्स हैं वो कुछ पहले ऊपर होंगे और कुछ बाद में, और उनका जो ऊपर और नीचे होना है वो आप उनकी टाइमिंग्स की थोड़ी सी चेंज उसके हिसाब से डिटेक्ट करेंगे। तो ये फैसिनेटिंग टेक्निक है और उसके हिसाब से एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी ग्रेविटेशनल वेव्स नए तरीके से डिटेक्ट की। अब मुझे ये दोबारा कहने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये बहुत ही सबर का काम है। ये 15 साल तक इसकी ऑब्जर्वेशंस होती रही हैं और ये मुख्तलिफ अरेज हैं जो अमरीका में है, उसका नाम है नैनोग्राव। उसने 68 मिलीसेकंड पल्सार्स की टाइमिंग्स जो हैं वो ट्रैक की। लेकिन इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियन पल्सार टाइमिंग अरे है, यूरोपियन पल्सार टाइमिंग अरे है, इंडियन पल्सार टाइमिंग अरे है और चाइनीज पल्सार टाइमिंग अरे है। इन तमाम ने मुख्तलिफ लेवल्स पे उन्होंने इस चीज़ को डिटेक्ट किया कि गालिबन कोई ग्रेविटेशनल वेव गुजरी थी। वैसे इन तमाम पल्सार टाइमिंग अरेज के कॉम्बिनेशन जो है वो इंटरनेशनल पल्सार टाइमिंग अरे है, और अब वो डेटा को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आइडेंटिकल मिलीसेकंड पल्सार्स नहीं इस्तेमाल हुए, कुछ ने कुछ इस्तेमाल किए और कुछ ने कुछ और, तो अब वो थोड़ा सा और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जाने से पहले एक दो चीजें। पहली बात तो यह है कि ये रिजल्ट काफी सॉलिड है क्योंकि इन तमाम पल्सार टाइमिंग रेज उन तमाम ने थोड़ा बहुत डिटेक्ट किया। लेकिन एक थोड़ी सी कॉशन की चीज यह है कि ये जो डिटेक्शन है वो जो साइंसदान कहते हैं 4 सिग्मा, ये वो डिटेक्शन है, जबकि जो एक लिहाज से जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव स्टैंडर्ड है वो 5 सिग्मा होता है, यानी कि ये रिजल्ट कुछ चांस से तो नहीं है। तो थोड़ी सी उसमें आप ये चीज अपने जहन के पीछे रखेंगे, थोड़ी सी इसमें अनसर्टनिटी है। दूसरी चीज ये है कि ये एक नया तरीका है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का। लेकिन ये ग्रेविटेशनल वेव्स कहां से आ रही हैं इसका अभी क्लैरिटी नहीं। मैंने सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और उनके ऑर्बिट की मैंने बात की थी, गालिबन मॉडल्स ही कहते हैं कि गालिबन ये उससे आ रही हो, लेकिन ये एक लिहाज से बैकग्राउंड हम है, यानी कि इनकी लो फ्रीक्वेंसी है। तो एक लिहाज से ये जो एक नैनोग्राव के एक एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने एक अच्छी मिसाल दी कि एक लिहाज से ये एक किस्म का कोरस है जिसकी आपको आवाज आ रही है, और ये मुख्तलिफ चीजों के गैलेक्सीज कहकशाएं गालिबन मूव कर रही हैं, या ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं उनकी मोशन की वजह से है, या शायद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के कोलिजन्स की वजह से है पिछले 13.5 अरब सालों में। तो गालिबन ये उसकी वजह से ये लो फ्रीक्वेंसी हम है। लेकिन वो जो लाइगो ने डिटेक्ट किया था वो हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स थी। उसका मतलब खाली ये है कि आपकी जो साइज है वेव्स का वो जरा ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो लाइगो वाली हैं वो एक थोड़ा सा चर्प है, चर्प। तो अगर आपका कोरस है तो आपका जो लाइगो के डिटेक्शन है जो जो रेगुलर साइज के जो बाइनरी ब्लैक होल्स के मर्जर हैं तो वो उसमें खाली चर्प आता है। ठीक है, और वो जो बैकग्राउंड हम है वो उसी तरह से रहती है। लेकिन मैं थोड़ी सी चटपटी बात भी मैं शामिल कर दूं, क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो इस चीज को भी पॉसिबल रखते हैं कि शायद ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, जो बैकग्राउंड हम है, हो सकता है कि वो एक चीज है इन्फ्लेशन, जो हमारी कायनात के शुरू होने के फौरन बाद हमारी जो कायनात है वो बहुत तेजी से फैली थी। शायद ये उसका एक सिंबल हो, शायद उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव्स हो वो हमें इन्फ्लेशन के बारे में बता रही हैं। और अगर ये बात सही है तो फिर ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, ये जो बैकग्राउंड हम है जो डिटेक्ट हुआ है, वो हमें उन कंडीशंस के बारे में बताता है जब हमारी कायनात जो है वो एक सेकंड से भी कम थी उसकी उम्र एक हिसाब से। एक और चीज जो पॉसिबल है वो नई किस्म की फिजिक्स है। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। ये एक लिहाज से स्पेस टाइम में एक फ्रैक्चर्स हैं। हो सकता है ये जो ग्रेविटेशनल बैकग्राउंड है वो उन कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की वजह से हो। अगर आपने स्टार ट्रैक देखी है नेक्स्ट जनरेशन, उसमें अक्सर उनको जो है वो कॉस्मिक स्ट्रिंग नजर आता था। एक बड़ी अच्छी एपिसोड है यस्टरडेज एंटरप्राइज, वो मेरा ख्याल है वो उस कॉस्मिक स्ट्रिंग के थ्रू गए थे। तो हो सकता है कि ये जो बैकग्राउंड हम है वो हमें कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के बारे में बताता है, लेकिन अभी हमारे पास उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं। तो ये जो है ये तो अभी खाली शुरुआत है। अब एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं इन जो बैकग्राउंड है ग्रेविटेशनल वेव्स का, अब वो उसको और एनालाइज कर सकेंगे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा डेटा बढ़ेगा और फिर वो ज़्यादा एक्यूरेटली गालिबन उस सोर्स को डिटेक्ट कर सकेंगे कि ये बैकग्राउंड हम जो है वो कहाँ से आ रहा है। मगर यार आप ज़रा सोचें कि मिली सेकेंड पल्सार्स जो हैं वो हमारी कायनात के हैरत अंगेज एक लिहाज से ऑब्जेक्ट्स हैं। वो उनके बारे में पढ़ना जो है वो खुद ही एक अजीब और गरीब किस्म की चीज है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने इन मिली सेकेंड पल्सर्स को इस्तेमाल किया है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के सिलसिले में, और एक लिहाज से उन्होंने इन मिली सेकेंड पल्सर्स के जरिए एक डिटेक्टर बनाया जो कि हमारी कहकशां के साइज के हिसाब से है। जो हम स्पीसीज है, हम खुद जो हैं, हमारी जमीन जो है वो हमारी अपनी कहकशां के बीच से तकरीबन 30,000 लाइट ईयर्स के फासले पर एक छोटे से एक बिल्कुल मामूली से एक हिस्से में है। मेरे ख्याल है कि ये एक अमेजिंग अचीवमेंट है कि उस छोटे से एक ऑर्डिनरी से सितारे के गिर्द जो छोटा सा सैयारा है एक बाहर की तरफ हमारी कहकशां में, उन्होंने लोगों ने वहां पर ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया जो हमारी कहकशां के थ्रू जा रही थी। ये एक अमेजिंग अचीवमेंट।